राम राम हरे हरे
राम राम हरे
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कार्तिक का आठवां दिन है आज, अष्टमी। ये कार्तिक महीना भगवान श्री राधा कृष्ण के पूजा करने का, प्रार्थना करने का, भक्ति करने का उत्तम महीना है। और आज राम अमितपतु अपने घर पे आप सब लोगों को सत्संग के लिए बुलाया है और हमको सेवा का अवसर दिया है। हम इस परिवार का धन्यवाद करते हैं और आप सबका आभार प्रकट करते हैं कि आप सब पधारे हैं। जो कुछ हम अब कर रहे थे ये धर्म है। धर्म का मतलब नेम, जो कौन देता है धर्म? धर्म भगवान देता है। धर्मात् साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। ये धर्मराज, ये धर्मराज शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म को कौन देता है संसार में? साक्षात भगवान धर्म को देते हैं। कोई आदमी धर्म नहीं बनाता, कोई आदमी धर्म नहीं देता। आदमी का बनाया हुआ धर्म नहीं कहलाता। धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम्। धर्म वो है जो भगवान ने दे, भगवान दे आज स्वयं आकर। इसलिए भगवद गीता का ये श्लोक भी आप सब लोग जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्योत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं धर्म को स्थापन करने के लिए आता हूं। तो धर्म स्थापन तो स्वयं भगवान करते हैं। तो धर्म कौन स्थापित करता है? भगवान स्वयं धर्म स्थापित करते। और धर्म है क्या? धर्म भगवान के दिए हुए नियम हैं, जिनके अनुसार हमारे को जीवन बिताना चाहिए। जैसे किसी देश में रहते हैं तो उस देश का कानून होता है, लॉ होता है, और हर अच्छे सिटीजन को अपने देश के कानून को मानना चाहिए। जो नए कानून को मानता है उसको अच्छा नागरिक कहते हैं, और जो कानून को नहीं मानता है उसको क्रिमिनल कहते हैं, लॉ को जो तोड़ता है। और जो लॉ को नहीं तोड़ता है वो बाहर रहते हैं, जो लॉ को तोड़ते हैं वो जेल में रहते हैं। ऐसा सरकार का नियम बना हुआ है कि नहीं? ठीक ऐसे ही भगवान ने धर्म का नियम बना के रखा है। जो धर्म के ऊपर चलते हैं वो तो आजाद होते हैं, किससे? संसार के बंधन से। और जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं वो अपने आप को बंधन में डाल देते हैं। कौन से बंधन में? जन्म मृत्यु के बंधन में। बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है। ऐसा कोई भी आज तक दवाई नहीं निकली है जो बूढ़ा होने से बचा दे। है मॉरिशस में कोई दवा कि बूढ़ा कोई आदमी नहीं हो? सब लोग बूढ़ा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ जी। तो अभी तक इतना बड़ा विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन बुढ़ापा तो खत्म नहीं किया जा सकता। 2 रुपये का रंग लेके बाल काले किए जा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो नहीं भगाया जा सकता है। हाँ? नहीं। मौत को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। बुद्धिमान वो है जो इन 4 दुखों को पहले जान ले संसार में। जन्म लेना कितना कठिन है। 9 महीना मां के गर्भ में उल्टा लटका रहना पड़ता है, अंधेरे में, कचरे में, गंध में पड़ा रहना पड़ता है, हिल भी नहीं सकता है। हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे यहां से निकालो, मैं आपको याद करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो कोई एक माता जी आगे कहती है, मेरा पोता आ गया, और थोड़ा सा मधु लेकर उसके मुंह में देती है, मेरे पोते को मुंह मीठा कर तुम। और कोई कहेगा मेरा बेटा है, कोई कहेगा मेरा भांजा है। वो किसी को नहीं जानता है। वो बच्चा किसी को जानता है? सब उसको अपना अपना करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो जो भगवान से वचन करके आया था, वायदा करके आया था, प्रॉमिस करके आया था, भूल जाता। जो अपना उसको कहते हैं आस्ते पांच साल तक तो बच्चा किसी को जानता नहीं है कौन मेरा है, कौन सी स्कूल में जाना है ये भी उसको आप नहीं पूछते, जबरदस्ती कहीं ना कहीं डाल के आ जाते हैं, तो उसके बस में तो कुछ होता नहीं। तो जन्म लेना बहुत कठिन है। ये दीप अर्पण करते हैं इसका अर्थ क्या है कि हम अज्ञानता से निकल जाएं, भगवान का दर्शन कर लें। कैसे भगवान का दर्शन करेंगे? जब अंदर में प्रकाश होगा। प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्ञान। हाँ, वेदों का ये मंत्र है, तमसो ज्योतिर्गमय। तमस कहते हैं अंधकार को, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। हाँ, मृत्यु और अमृतम गमय, मृत्यु से हमारे को अमृता की तरफ ले चलो, मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त करो। तो ये वेद में शिक्षा दी जाती थी कि हम अज्ञान से अंधकार से निकलें। दीप जलाया तो प्रकाश हो गया। और अभी आने वाली है दीपावली, 5 तारीख को यहाँ छुट्टी है, दीपावली है। सब घर को साफ करते हैं, यहाँ से घर साफ करते हैं, लोग सफाई करते हैं घर की और फिर दीप जलाते हैं। क्यों? कि भगवान रामचंद्र आएंगे हमारे घर में। ये तो अयोध्या वासियों ने भगवान रामचंद्र के स्वागत के लिए दीप जलाए थे और घर अपने पूरा नगर सजा के साफ किया था। अभी हम घर तो बहुत चमकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान तो दिल में बैठता है, दिल को भी साफ करना पड़ेगा ना। वो तो कचरे से भरा हुआ है, दूसरे के लिए क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, दूसरे की बुराई करते हैं, ये सब कचरा अंदर पड़ा है, तो भगवान कैसे अंदर प्रवेश करें? राम जी आ रहे हैं अयोध्या में, ये समाचार कौन लाया था? हनुमान। राम जी के आने से पहले हनुमान जी ने भरत को आकर बताया था, श्री रामचंद्र पुष्पक विमान में कल सुबह यहाँ पहुंचेंगे, अभी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके हुए हैं प्रयागराज में। तो भगवान के आने का संदेश कौन देता है? भगवान का भक्त। भक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। भक्त का दर्शन होगा तभी भगवान मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कोई चीज है वो है भक्त का संग मिलना। अगर भक्त मिल गया तो भगवान का समाचार मिलेगा। हनुमान आया तो भरत का हृदय प्रसन्न हो गया, राम जी का समाचार हुआ, आ गया हमारे को, तो पूरा अयोध्या आनंद में मगन हो गया। तो भक्त के संग से ही भगवान मिलता है और कोई भगवान के मिलने का साधन नहीं। तो ये मुख्य चीज है, ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी वन कैन नो अबाउट गॉड। ये सब हम इतना बड़ा उत्सव पूरे दुनिया के अंदर मना रहे हैं कार्तिक मास में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान आपकी ओर से, ये एक भक्त के कारण। एक भक्त श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में, 69 ईयर्स उनका बर्थडे 70th ईयर का, वो तो पानी के जहाज के अंदर समुद्र में मनाया था, लेकिन भक्त, एक भक्त ने पूरे दुनिया के अंदर इतना बड़ा रिवोल्यूशन कर दिया कि आज दुनिया के हर कोने कोने में भगवान के कीर्तन और गुणगान होते हैं। एक भक्त के द्वारा पूरे विश्व को भगवान का संदेश मिल गया। एक हनुमान पूरे अयोध्या को आनंद में कर दिए। एक ये भक्त भारत से संदेश लेकर गया चैतन्य महाप्रभु का और पूरे विश्व को जगमगा दिया कृष्ण ज्योति से, कृष्ण भक्ति की ज्योति से। आज नहीं तो अभी दुनिया के हजारों मंदिरों के अंदर ऐसे और लाखों मिलियंस हाउसेज में आज ऐसे पूरी दुनिया में दीप दर्पण हो रहे हैं। कम से कम मैं समझता हूँ 10 मिलियन हाउसेज में इस वक्त रात को दीप अर्पण हो रहे हैं घरों घरों में। तो कितनी बड़ी जागृति एक भक्त के कारण हुई है। तो भगवान अपने भक्तों को इस संसार में भेजते हैं ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। भक्त के साथ मिलना, उसको प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान को जानना और पहचानना और उसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। भगवान को समझाना, प्रभुपाद एक जगह बड़ा आश्चर्य से एक बात कह रहे थे कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको खुश करना तो कोई आसान बात नहीं है। कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर को खुश तो नहीं कर, क्या दोगे आप? वो देश तो सब उसका है। जो कुछ दो उसके पास पहले ही है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे थे अगर प्राइम मिनिस्टर जाता हो और सुबह घूमता है उसके हाथ में कुत्ता है, जंजीर में बंधा हुआ है, और आप कुत्ते को एक बिस्कुट दे दो और कुत्ता उसको खाए तो प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाएगा कि मेरे कुत्ते को बिस्कुट खिलाया। और प्रभुपाद ने कहा आगे, ऐसे हम भगवान के कुत्ते हैं, हमारे गले में रस्सा डाला हुआ है, और हम तो ऐसे बच्चे को खुश करना आसान है टाफी देकर, लेकिन मालिक को खुश नहीं किया जा सकता है। भक्त को प्रसन्न करना आसान है और उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक भक्त की महिमा के कारण ये पूरा महीना हम मना रहे हैं, और वो भक्त यशोदा मैया है। आज माँ यशोदा के प्रेम से कृष्ण बंध गए हैं, रस्सी से बांधे गए हैं। रस्सी से कभी भगवान नहीं बनता है। वो इस श्लोक गाया आपने उसमें लिखा है, भक्ति भक्ति बधाम, प्रेम भक्ति से भगवान बंध गए हैं। रस्सी से भगवान को नहीं बांधा जा सकता, कहां से बांधोगे? भगवान विश्व सारा भगवान का स्वरूप है, कोई दुनिया को बांध सकता है क्या? हाँ, आप कोई आदमी दुनिया को बांध सकता है? नहीं बांध सकता है ना। तो दुनिया कहां है? भगवान के पेट में। दुनिया सारी भगवान के पेट में, विश्व से धाम तब उदारा अर्थ, आपके पेट में सारी दुनिया समाई हुई है। और मां यशोदा ने भगवान के पेट को क्या बांधा? पूरी दुनिया को बांध लिया। एक भक्त के प्रेम में भगवान बंध गए, और उस भक्त के कारण आज हम इतने सब लोग लाखों की संख्या में दुनिया में उस गीत को गा रहे हैं, दामोदरम भक्ति बधाम। भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा ने बांध दिया। तो एक भक्त के कारण इतना बड़ा उत्सव पूरी दुनिया हजारों सालों से मना रही, एक भक्त के समाचार लाने के कारण पूरी दुनिया दिवाली के दिन अपने घर जगमगा रही है। एक हनुमान ने समाचार दिया था, एक भक्त ने समाचार दिया, और पूरी दुनिया में आज लाखों सालों से दिए जल रहे हैं। कितना बड़ा, आप कभी इसके ऊपर विचार करके देखो, एक भक्त कितना बड़ा काम करके जाता है। इतने सालों से दिवाली का उत्सव मना रहा है, लेकिन समाचार हनुमान जी लाए थे। एक मां यशोदा ने क्या प्रेम से इस महीने के अंदर गोपाल को बांध दिया कि उसके प्रेम की भक्ति के गीत लाखों लाखों भक्त गाते हुए और ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि जैसी भक्ति मां यशोदा ने की और उसको प्रेम मिला, ऐसे उनके चरणों की सेवा हमको मिले। अभी भक्त यही गा रहे हैं, स्वकम में भक्त्या प्रियच्छ, ऐसी मैं भक्ति चाहता हूं आपसे हे दामोदर, जैसे आपने कुबेर के बेटों को भक्ति दी। वो तो बदमाश थे, इसका अर्थ है कि हम कोई अच्छे आदमी नहीं है। भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं हम अच्छे आदमी नहीं है, हम तो बहुत बड़े बेईमान भी हैं और क्रोधी भी हैं, कामी भी हैं, लोभी भी हैं, सब बुराइयां हम में हैं, फिर भी आपने कुबेर के दो बेटों का उद्धार कर दिया। कुबेरात मजो, कैसे थे कुबेर के बेटे? उनका नाम नहीं लिया क्योंकि नाम लेने जैसे नहीं थे, काम बड़ा खराब कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? शराब पिया हुआ था, आंखें लाल लाल घूम रही थी, लड़कियों के साथ नंगे होके नहा रहे थे समुद्र सरोवर के अंदर। ये अच्छा काम कर रहे? बुरा काम कर रहे थे, नाम ही नहीं लिया उसका, मतलब कुबेर के बेटे, कुबेर आत्मजो। काम ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक भक्त की कृपा हो गई, नारद जी ने उसको देख लिया और नारद जी ने कहा मैं तो देव ऋषि हूं, देवताओं का गुरु हूं, और ये देवता के बेटे हैं, तो मेरा यजमान बिगड़ रहा है, इसको तो सुधारना चाहिए। उसने कहा कि ये तो देवता का बेटा है, मैं देव ऋषि हूं तो मैं उनका गुरु हूं, तो मेरे शिष्य के बेटे हैं, खराब हो रहे हैं, इनको सुधारना चाहिए। कितनी बड़ी उनकी दृष्टि थी, बुरे को बुरा नहीं कहा, उसके सुधारने का विचार किया। एक दिन, अभी 7 तारीख को गोवर्धन पूजा है, बड़ा उत्सव मनाया जाएगा सब मंदिरों में। मायापुर में 73 में उत्सव मनाया गया गोवर्धन पूजा का, बहुत बड़ा प्रसाद बनाया, लोगों ने प्रसाद खाया। प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे तो बाहर कुछ बच्चों का चिल्लाने का और कुत्तों के भौंकने का आवाज आने लगा, तो प्रभुपाद उठ के बाहर देखने गए। प्रभुपाद ने देखा लोगों ने जो पत्तल फेंके हैं उसमें थोड़ा सा प्रसाद बच गया है, उसको कुत्ता खाने चाहता है और बच्चे कुत्ते को भगा रहे हैं उस प्रसाद को खाने के लिए। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए और प्रभुपाद ने कमरे में आकर सब अपने बड़े भक्तों को बुलाया, बोला देखो ये भगवान का घर है हमारा मंदिर, भगवान सबके पिता हैं, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई आदमी भूखा नहीं होना चाहिए, सबको प्रतिदिन इतना प्रसाद बांटो कि कोई भी यहां भूखा नहीं होना चाहिए। बाप के घर में बेटा भूखा रहे ये बाप को मंजूर नहीं है, भगवान सबका पिता है और भगवान के घर के पास रहते हैं वो भूखे कैसे रह सकते हैं। इसलिए वृंदावन में ये कहावत है 84 कोस में रहते तो सब गरीब लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं लेकिन कोई भी भूखा नहीं जाता है। आज भी वृंदावन में नहीं तो भी 50,000 साधु रहते होंगे, कैसे भी असली या नकली लेकिन साधु के वेश में रहते होंगे, लेकिन उन सबको रोटी 2 टाइम की लोग देते हैं। किसी के घर में जाके ऐसे खड़े होके बोल दो मैया राधे राधे तो माँ जरूर 2 रोटी देगी, अपने बच्चे को भले आधी दे लेकिन मांगने वाले को जरूर देगी। ये वृंदावन में आज भी कोई भूखा नहीं रहता है, ये मानना है कि राधा रानी किसी को भूखा नहीं छोड़ती है। प्रभुपाद ने कहा भगवान पिता है सबका और बच्चे कुत्ते के साथ लड़के जूठे प्रसाद को खाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। तब से ये एक बात केवल प्रभुपाद ने कही और पूरे दुनिया के अंदर अधिक से अधिक प्रसाद बना के प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों को देने का काम शुरू किया कृष्ण प्रसाद का। तो एक भक्त के एक दृष्टि देखने से इतना बड़ा परिवर्तन होता है। आज नहीं तो अभी रोज का 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन कम मैं कहता हूं, लोगों को फ्री में कृष्ण प्रसाद बांटा जाता है, आज भी पूरी दुनिया में हो रहा है। तो एक भक्त के छोटे से दृष्टिकोण से भगवान की दृष्टि से सब चीजों को देखता है। तो ये दामोदर का महीना आप सब लोग अपने घरों में, बाकी आज 8 दिन पूरे हुए हैं, अभी 22 दिन और हैं, 21 तक चलेगा पूर्णिमा जो आएगी, जिसको आप मेरे ख्याल में गंगा पूर्णिमा करके स्नान करते हो उस दिन ना, उसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उसमें सब लोग जाते हैं भारत में गंगा के किनारे स्नान करने। तो आप लोग के यहाँ समुन्द्र है, गंगा फिर भी समुन्द्र में जाके मिलती है, तो गंगा का पानी समुन्द्र में भी आया, गंगा कहाँ मिलती है, गंगा सागर, गंगा और सागर का संगम होता है भारत में। वहां 14 जनवरी को बहुत मेला लगता है, लाखों लोग उस मेले में जाते हैं, बहुत ठंडी होती है, मेरे ख्याल में 2 डिग्री टेम्परेचर या 3 डिग्री टेम्परेचर होगा, 2 या 3, उसमें लोग उधर जाते हैं नहाने के लिए और लाखों लोग उधर होते हैं। कहते हैं बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार करना चाहिए तीर्थ, जहाँ गंगा जाके सागर में मिलती है, इसी हिंद महासागर में मिलती है, तो गंगा का जल यहाँ इस पानी में भी मिला हुआ है, तो आप जाके गंगा समुद्र में नहाते हो तो गंगा इसमें गंगा जल मिला हुआ है। तो वो पूर्णिमा तक ये चलेगा, आप अपने घरों में भगवान राधा कृष्ण को रखकर और दीप अपने परिवार वाले सारे जलाने का एक महीना प्रयास करको, प्रयास क्या करो, ये आपका धर्म है इसका आप पालन करो, ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा, सुख लाएगा, आनंद लाएगा, परेशानी और दुख से आपको बचाएगा। ये शिक्षा शास्त्रों के अंदर धर्म के नाम में भगवान ने दी हुई है, लेकिन कभी धर्म भी अधर्म का कार्य करे तो भगवान उसको नहीं सहते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। साधु पुरुषों की तो मैं रक्षा करता हूं, इसका मतलब हमको क्या बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए। साधु बनने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ना चाहिए, दुकान मकान छोड़ना चाहिए, साधु बनने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। साधु वो है जो साधना करता है और साधना का अर्थ है रोज बैठ के भगवान का नाम जपना, ये सबसे बड़ी साधना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप रूपी यज्ञ हूं। रोज उठ के घर में किस जो भी समय मिले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करो। एक माला के जप करने में 7 मिनट लगते हैं और 7 मिनट रोज सब लोगों को सुबह ब्रश करने में लगते हैं, मुंह धोने में लगते हैं। सब लोग ब्रश क्यों करते हैं? करते हैं ना मॉरिशस में, है ना, टूथब्रश बिकते हैं ना रोज, करते हैं सब लोग। क्यों करते हैं? कि हमारा मुंह साफ होना चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, दांत को मांजने के लिए करते हैं ना, क्योंकि सबको दिखते हैं चमकते हुए। लेकिन दिल कैसे साफ होगा? किसी को दिखता नहीं है। दिल भी तो साफ करना चाहिए ना, रोज मुंह धोते हैं, हाँ, आंखें धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये तो बाहर की सफाई करते हैं, अंदर की भी कुछ सफाई करनी चाहिए ना। अंदर की सफाई कैसे होती है? बाहर की सफाई तो होती है हाथ मुंह धोने से, ब्रश करने से और स्नान करने से, नहाने से, बैथिंग से। अंदर की सफाई होती है भगवान के नाम लेने से। मन पवित्र हरि नाम लियो, हृदय की पवित्रता भगवान के नाम लेने से होती है। इसलिए सबको ये कार्तिक महीने में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। किसी और मंत्र को आपको आता है नहीं आता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इतना सरल मंत्र इस दुनिया के पैदा करने वाले ब्रह्मा जी ने दिया है, और ब्रह्मा जी ने ये मंत्र नारद को दिया है, और नारद के द्वारा ये मंत्र पूरी दुनिया को मुफ्त में और बगैर किसी गुरु शिष्य के झंझट के सीधा दे दिया है ब्रह्मा जी ने। कि कोई भी कालयुग में बच्चा हो, बड़ा हो, माता हो, पुरुष हो, स्त्री हो, काला हो, गोरा हो, जो भी इसको जपेगा अपने अंदर को पवित्र करेगा और भगवान को निकट पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये महीने हमारी आपको हाथ जोड़ के विनती है, अपने घरों में भगवान राधा दामोदर को दीप शाम के समय अर्पण करो 7 बजे, और इस मंत्र की एक माला का जप करने का नियम बना लो। आपका जीवन बदल जाएगा, ये धर्म है। ये धर्म पालन करने से आप भगवान के रक्षा के अंदर आ जाओगे। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की मैं रक्षा करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है। तो हम भक्त कब बनेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा भक्त बनने में। नहीं नहीं नहीं, अभी इसी वक्त आपने मुख से भगवान का नाम लिया तो आप भक्त बन गए। भक्त बनने के लिए कोई जन्म नहीं लगते हैं, 1 मिनट में बन सकते हैं, और नहीं बनना चाहे तो कई जन्म लगते हैं, नहीं बन सकता है। एक क्षण में बन सकते हैं, एक पल में बन सकते हैं। अभी मन में परिवर्तन हो जाए कि कल से हम भगवान का नाम ले जाएं, लेना शुरू करें, तो अभी से भक्त बन गए। जो एक बार हरे कृष्ण मंत्र जपता है वो भक्त है, एक बार भगवान का नाम लेता है वो भक्त है। तो भक्त होने से भगवान हमारी रक्षा की जिम्मेवारी लेता है। भक्त बनने का मतलब भगवान को अपना हाथ दे देना। जैसे बच्चा माता पिता के हाथ में हाथ देता है तो उसको कोई चिंता नहीं है। कहीं भी बाजार में जाता है, किसी भी सड़क के ऊपर है, हाथ अगर पकड़ा हुआ है माता पिता ने तो फिर उसको कोई डर नहीं। हाँ, कितना भी भीड़ में कहीं भी जाए बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। और अकेला बच्चा तो कहीं भी जाएगा तो गुम हो जाएगा और घर भी अपना लौट के नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसे हम भी संसार में भटक रहे हैं। भक्त बनने का मतलब है भगवान के साथ हम अपना हाथ मिलाना चाहते हैं, और एक बार भगवान के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया तो हमारे अपने घर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और दुनिया के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर भी अधर्म अपना रंग दिखाता रहेगा, कलयुग है। आप प्रयास करोगे फिर भी परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान का साथ छोड़ना मत, भगवान को याद करना कभी भूलना मत। अब हम भगवान को कोई हमको शिक्षा नहीं देता है। समस्या ये है, स्कूल बहुत हैं, कॉलेज बहुत हैं, लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेज में आत्मा की और भगवान की शिक्षा नहीं मिलती है। ये बहुत दुखी की बात है। किसी भी कॉलेज में प्रेम करने की शिक्षा नहीं मिलती है। कोई है प्रेम का कॉलेज? प्रेम का कॉलेज कोई भी नहीं। इसलिए प्रेम करना भी किसी को नहीं आता है। सभी प्रेम के नाम में एक दूसरे से धोखा करते हैं। प्रेम क्या? प्रेम तो यशोदा मैया कर रही है कन्हैया से, उसके लिए 4 बजे उठ के मक्खन बना रही है, दही मंथन कर रही है। ये तो जो भक्ति का कथा कीर्तन है ये प्रेम की क्लासेस है। भगवान से प्रेम करने का ये स्कूल है। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये प्रेम की शिक्षा है। प्रेम का अर्थ ही ये होता है धर्म वो है जो हमको भगवान से प्रेम करना सिखाए। सबसे उत्तम धर्म की परिभाषा क्या है? जिसमें जीव भगवान से प्रेम करना लगे, उसको धर्म बोलते हैं। बाकी सब धर्म रिचुअल हैं, घंटी बजाना है, लेकिन असली धर्म है भगवान से प्रेम करना। और भगवान से प्रेम करने के लिए सरल साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो आपको भगवान के प्रेम करने वाले इस महीने में एक तो बताया आपको समाचार मां यशोदा का, और इसी दामोदर अष्टक जो अभी आपने गाया इसकी अंतिम पंक्ति में लास्ट अष्टक में क्या लिखा है? नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। दामोदर अष्टक गाते हुए राधा रानी को बीच में कैसे लाए? राधा दामोदर, राधा दामोदर याद आ गया। ये यशोदा दामोदर है, बांधा तो यशोदा मां ने उखल से था कन्हैया छोटे 3 वर्ष को, लेकिन कृष्ण को राधा रानी ने भी प्रेम से ही बांधा था, इसलिए उसको राधा दामोदर कहते हैं। और अनंत लीला का मतलब भगवान की रास लीला का वर्णन है। तो सत्यव्रत मुनि वात्सल्य प्रेम से माधुर्य प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। और एक बार ऐसे हुआ था, कृष्ण राधा रानी से मिलने देर से आया, और राधा रानी का इतनी देर क्यों कर दी थी, और खड़ा पेड़ के पास खड़ा करके, और जो जो वाइन्स होते हैं गोल्डन कलर की कुछ वाइन वहां यहाँ है ना बेल आपके बहुत ही सुशुद्ध वाइन में होता है ना, ये जो बना है क्या बोलते हैं उसको, बेल वाइन्स को क्या बोलते हैं, लालियान, लालियान गोल्डन लालियान से राधा रानी ने कृष्ण को बांध दिया पेड़ के साथ। बोला देर से क्यों आए? बोला यशोदा मैया ने घर से आने में रोक दिया, फिर खोल दिया। तो यशोदा दामोदर और राधा दामोदर, ये महीने में राधा दामोदर की उपासना करनी चाहिए, ऐसे कार्तिक मास का महत्व है। तो सब लीलाओं में भगवान से उत्तम लीला रासलीला की, और रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्यायों में है, 29 से लेकर 33 तक। इसको बोलते हैं रास पंचोध्याय। ये हृदय है भागवत का, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। लेकिन रास पंचोध्याय के बाद 36 चैप्टर में भगवान यहां से जाने से पहले, कहां से, वृंदावन से जाने से पहले, श्री कृष्ण वृंदावन से 11 साल की आयु में छोड़ के मथुरा चले गए और वहां रहे 18-20 साल, और उसके बाद बाकी 100 साल द्वारका में रहे। तो जाने से पहले श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुरक्षित करना चाहते थे, किस चीज से, कि कोई भी कृष्ण प्रेम जो इनका है, इन सब भक्तों का जो कृष्ण कह रहे थे मुझे साथ प्रेम है, इसको कोई धर्म के नाम में, योग के नाम में, वेद के नाम में पथ भ्रष्ट न कर दे। मतलब रास्ता इनका जो मेरे तरफ आ रहा है, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, इनको कहीं वो डिस्टर्ब न करें, डिस्टर्ब न करें। इसलिए एक दिन की बात है, आज का दिन जो है इसको कहते हैं बहुला अष्टमी। आज के दिन भगवान रात को 7:30-8 बजे के करीब एक स्थान वृंदावन में, वहां बांसुरी बजाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सब जगहों से भगवान की प्रेमी गोपियां वहां प्रकट हो गई, आ गई, और सबने आके विचार किया अब रास लीला का उत्सव मनाएंगे कार्तिक मास। इतनी देर में 9:30 बजे के करीब रात को एक बहुत बड़ा काला सा भयंकर बेल, बुल, दूर से धूली उड़ाता हुआ सिंह से और खुरों से जमीन को हिलाता हुआ और पूंछ से इतना बड़ा था 200 मीटर पूंछ से बादलों को हिलाता हुआ क्लाउड्स को उस क्षेत्र में आया। इस बैल को देखकर और बैल को धरती के ऊपर ऐसा बैल ने धरती को हिलाया जैसे अर्थक्वेक हो गई है और भागवत में लिखा है लोग भयभीत हो गए, जो गायों को बच्चे थे बच्चे गिर गए और सब लोग भागते हुए कृष्ण के शरण में गए, कृष्ण 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 हमारी रक्षा करो, श्री कृष्ण हम आपके शरण में है आप हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण अपने भक्तों के संग में गले में गले के ऊपर हाथ रख के खड़े थे। एक बार आपने देखा है अपना कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण खड़े हैं और बलराम खड़े हैं और बलराम जी का हाथ कृष्ण के कंधे पे ऊपर है तो कौन बड़ा है। एक बार प्रभुपाद ने पूछा कौन बड़ा है, सने का बलराम बड़ा है। बोला बलराम बड़ा है तो फिर कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रख के क्यों खड़ा है, तो कृष्ण का सहारा चाहिए ना उसको भी, उसके कृष्ण के सहारे खड़ा है तो कंधे के ऊपर हाथ रखने का मतलब किसी का सहारा चाहिए। तो कृष्ण ने बेल को देख के कहा दुराचारी अपराधी ब्रजवासियों को तुम दुख क्यों पहुंचा रहे हो। और उस बेल के साथ भगवान श्री कृष्ण लड़ने के लिए तैयार हुए। बेल दूर से भागता हुआ कृष्ण को मारने के लिए सिंगों से आया, कृष्ण ने उसको धक्का दिया, बेल दूर जाके गिरा और बेल उठ के कृष्ण को धक्का दिया, कृष्ण दूर चले गए 200 योजन दूर चले गए। और फिर कृष्ण मुस्कुरा के बेल की ओर देख रहा है, बेल की आंखें लाल है और वो गोबर करता हुआ मूत बहाता हुआ क्रोध में आया है। गोबर और मूत जब बेल निकल रहा था गोबर में, इसका मतलब उसका मृत्यु नजदीक था। इस दुनिया में जब एंड होती है डेथ, तब सबका मलमूत्र त्याग होता है, अंत समय सबका ये हाल। इस दुनिया में आए तब भी सब मलमूत्र करते हुए कचरे में आए, जाएंगे भी कचरे में, बीच में सिर्फ बदमाशी करते हैं, बाकी कुछ दुनिया को नहीं देते हैं, ये सिर्फ यही कचरा दे के जाते हैं कुछ नहीं देते हैं, सभी लोगों को दुख दे के चले जाते हैं। मरते हुए बहुत से लोगों का ये हाल होता है, भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होते हैं, क्योंकि उस वक्त यमराज का जो एजेंट है ना चित्रगुप्त, वो उसके जीवन के सारे कर्मों की टेलीविजन का रील चलाता है और कोई नहीं देखता है, वो देखता है कहता है इस दिन मैंने ये किया था, इसको पता है तो मेरा फोटो निकला हुआ है, मैंने ये बदमाशी की थी, मैंने ये चोरी की थी। वो अपने सारे करतूत देखता है उस रील में और फिर डरता है कि अब सब किसी को पता है, मैंने समझा किसी ने देखा नहीं, ये कैमरा कहां से आ गई, ये कैसे फोटो निकला हुआ है, तो बहुत डरता है बेचारा। अंत समय में मरते समय लोगों को देखा है सब डरते हुए, किसी मृत्यु के समय देखना चेहरा लोगों का, कोई साधु होगा तो मुस्कुराता हुआ जाएगा क्योंकि उसके सामने भगवान की छवि होगी, बाकी संसार के लोग तो मलमूत्र त्यागते हुए जाते हैं इस दुनिया से। तो अब इस बैल का मरने का समय नजदीक था, कन्हैया ने पहले सींग से पकड़ा और बाद में पूंछ से पकड़ के घुमाया, घुमा घुमा के दूर फेंका और गिरते ही उसके मुंह से खून निकला और बैल के प्राण निकल गए। बैल के जैसे प्राण निकले, बैल के शरीर से एक बहुत दिव्य पुरुष निकला, ब्राह्मण, भगवान को प्रणाम किया, कौन हो तुम, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, प्रतांत मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण था, मैं गुरु के सामने पांव लंबे करके बैठा था, आगे पांव करके ऐसे बैठा था, गुरु ने मेरे को देखा तुम्हें बैठना भी नहीं आता, बैल की तरह बैठा है। मंदिर में हम देखते हैं यहां कोई बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन सब कहीं ऐसे पांव सामने भगवान की तरफ पांव करके बैठते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, पांव भगवान की तरफ करके बैठना बहुत बड़ा अपराध है। जप करते हुए प्रभुपाद के जप में कभी टेप को सुने सिट प्रॉपरली, इसका मतलब पांव लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। उसने बोला केवल मैं पांव लंबे करके बैठा था, गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने कहा बैल की तरह बैठा हो बैल बन जाओ, और मैं बैल बन गया। लेकिन फिर मैं बंग देश में असुरों के संग में रहा, असुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ, लेकिन आज आपकी कृपा से मैं इस बैल जूनी से मुक्त हुआ। तो शिक्षा ये मिलती है कि आदमी इस दुनिया में पांव लंबा करके बैठता है मंदिर में साधु के संग में, तो दूसरी जनी में वो बैल बनेगा। अच्छा है, कुछ ज्यादा बैल बने यहाँ तो खेती तो करेंगे। तेल बंद हो जाएगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, तो कुछ तो बैल आने चाहिए। ट्रैक्टर को प्रभुपाद कहते हैं ये बैल का घातिक है। जितने बैल थे उनको ट्रैक्टर ने मरवाया। जब ट्रैक्टर आया तो लोगों ने बैल को मार के खा लिया, नहीं तो कोई बैल को नहीं मारता था, उसी से खेती होती थी। तो ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर असुर है, ये बैल को मार दिया सब ट्रैक्टरों ने। और आपके यहाँ तो बड़े मोटे मोटे ट्रैक्टर असुर है, ट्रैक्टर असुर है। तो जैसे ये बैल को तो भगवान ने मार दिया, बैल क्या होता है? बैल शास्त्र में बैल को धर्म का प्रतीक बोलते हैं। जो बैल है वो धर्म का चिन्ह है। ध्वल वृषभ धर्म, धर्म का चिन्ह बैल है। तो भगवान ने इस बैल को क्यों मारा? अरे गोपाल नाम है, गाय की रक्षा करने के लिए आया। पहले वत्सासुर को मारा, एक बछड़े को मारा, फिर आज एक बैल को मारा। भगवान ऐसे क्यों कर दिया? बोला ये धर्म के रूप में अधर्म का कार्य कर रहा था। तो ऐसे कोई धर्म के नाम में, बहुत से आज के दिन धर्म के नाम में लाखों हजारों लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। धर्म के नाम में लोग लोगों को लूट रहे हैं। आज धर्म एक ऑर्गेनाइज बिजनेस हो गया है। आज धर्म एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज बिजनेस है। वो धर्म का एक विकृत रूप योगा है। योग धर्म के शास्त्र से निकला है और उसके नाम में दुनिया में कितना बड़ा धंधा चल रहा है। योग का कितना, योग के नाम में लोगों की जेब से पैसा निकल रहा है। योग का अर्थ होता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, लेकिन ये योग वाले सब भोग सिखाते हैं। लेकिन देखो ये धर्म के नाम में कितना अधर्म हो रहा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त अधर्म धर्म के नाम में बहुत से लोग कर रहे हैं। असली साधु मिलना बहुत मुश्किल है। सब साधु पेट पूरे पूरे करने के लिए, पैसा कमाने के लिए धर्म का दुकान धंधा लगा के रखा हुआ है। ये भगवान ऐसे अधर्म के रूप में धर्म का वध कर दिया, मार दिया। आज के दिन भगवान ने धर्म का चिन्ह बैल है, क्योंकि अधर्म असुरी हो गया था तो उसको मार दिया। जैसे ही बैल मरा तो सब शांत हो गए, आनंद में मगन हो गए। लेकिन रासलीला के आई हुई गोपियां जो खड़ी थी वो कृष्ण को बोलती है अब हमको हाथ मत लगाओ। अरे क्यों, क्या हो गया? बोला आपने एक बैल को मारा है, गाय को मारा है, अधर्म हो गया। गाय को मारने वाले को पाप लगता है। हाँ, राजा रानी बोलती हमको हाथ मत लगाओ, तुमने बैल को मारा है और गाय का हत्यारा हमको हाथ नहीं लगाया है, तो क्या करूं? बोले जाओ सब तीर्थों में स्नान करके आओ, जितने ब्रह्मांड में तीर्थ है उन सब में जाओ स्नान करो, कृष्ण को बोला। कृष्ण बोला मैं कहां कहां जाके तीर्थों को ढूंढूंगा, मैं यही बुलाता हूं सबको। श्री कृष्ण ने अपने पांव के हील से खड्डा बनाया और सब तीर्थों का आवाहन किया, आइए प्रयागराज, आइए गंगा, जमुना, भोगवती, सब तीर्थों को बुलाया। सारे तीर्थ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या करना है भगवान? महाराज आज्ञा दीजिए। बोला यहां सब आप अपना जल लाके डालो। सबने वहां जल डाला और भगवान ने उसमें स्नान किया। स्नान करके कहते हैं गोपियों राधानी को, अब मैंने स्नान कर लिया ना? बोला हम नहीं मानती तुम्हारे स्नान को, कैसे ये सब तीर्थ आए, हमको क्या मालूम। भगवान कहता है ऐसा आज तक किसी ने कोई पानी का, एक जगह पे सब तीर्थों का पानी कहीं नहीं मिलता है, मैंने यहां इकट्ठा किया है। और उस जहां पानी ये इकट्ठा हुआ था उसका नाम हो गया श्याम कुंड। कृष्ण ने उस कुंड को तैयार किया। राधा रानी ने बोला हम तुम्हारे कुंड में नहीं नहाएंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तब राधा रानी ने सब गोपियों को बोला सखियों आओ हम अपना कुंड अलग बनाएंगे। सखियों ने अपनी चूड़ी निकाली और चूड़ी से कुंड बनाना शुरू किया। कंकन कुंड, कंकन इसको कंकन बोलते हैं, कुंड बना, उसमें पानी कहां से लाओगी? कृष्ण ने बोला आपके कुंड तो खाली पड़ा है, पानी कहां से लाओगी? बोला मानसी गंगा से पानी लाएंगे। वहां से 2 किलोमीटर दूर मानसी गंगा है। वो हजारों गोपियां लाइन में खड़ी हो गई, मटका भर के सब उस कुंड को भरने लगी। कुंड तैयार हो गया। राधा रानी उस कुंड के पास बैठ के देखिए। तब कृष्ण ने सब देवताओं को कहा, सब जो तीर्थराज आए हुए थे तीर्थों को कहा आप जाके राधा रानी को प्रार्थना करो। सब तीर्थों ने राधा रानी को प्रार्थना की। राधा रानी कहा आपको क्या चाहिए? बोला आप अपने कुंड में हमको स्थान दीजिए तब हमारा जन्म सफल होगा, हमारे तीर्थ होने का उद्देश्य तब सफल होगा जब आपके कुंड में हमको स्थान देंगे। तब राजा रानी ने कहा ठीक है, आंख के इशारे से कहा आप सब का जल मेरे कुंड में आए। तो श्याम कुंड का जल बीच में एक कनेक्शन हुआ और उस कनेक्शन के श्याम कुंड का जल बहकर राधा कुंड में आया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर राधा रानी को कहने लगे ये आपका कुंड और आप में कोई अंतर नहीं है, मैं प्रतिदिन इस कुंड में नहाने आऊंगा और हम इस कुंड में जल क्रीड़ा करेंगे। तो आज के दिन इस वक्त कुंड जब राधा रानी का तैयार हुआ और उसमें सब तीर्थों का पानी गया तब रात के 11:55 हो गए, 12 सबने उसमें स्नान किया। तो आज रात को राधा कुंड का प्रकट्य दिवस है और राधा कुंड के किनारे पे लाखों लोग आज स्नान करने के लिए रात को 12 गए होंगे वृंदावन में। तो ये राधा कुंड का आज आविर्भाव दिवस है, इसको बहुला अष्टमी बोलते हैं। तो राधा कुंड के लिए रूप गोस्वामी ने लिखा है पूरी दुनिया में मथुरा सबसे उत्तम है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए श्री कृष्ण, लेकिन मथुरा मंडल में वृंदावन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने वहां बाल लीलाएं की। वृंदावन से गोवर्धन बहुत प्रेम में उत्तम है क्योंकि उसको भगवान ने अपने हाथ के ऊपर धारण किया, लेकिन गोवर्धन से भी राधा कुंड बहुत प्रिय है। दुनिया में सबसे उत्तम स्थान राधा कुंड है क्योंकि भगवान नित्य रोज प्रतिदिन उसमें नहाते हैं। तो उस राधा कुंड का आज प्रकट्य दिवस है, बहुला अष्टमी है। तो आप सबको राधा कुंड प्रकट्य की बधाई हो और कोई भारत में जाए गोवर्धन में की परिक्रमा करके राधा कुंड में पहुंचे और राधा कुंड में एक बार स्नान करे तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होता है और सारे जन्मों के पाप तो अपने आप नाश हो जाते हैं। तो वृंदावन के अंदर ब्रज में ये बहुत सुंदर स्थान, गोवर्धन के मुख, गोवर्धन की दोनों आंखें हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। तो आज राधा कुंड का आविर्भाव दिन है और श्री नित्यानंद प्रभु वो सामने ये जो बीच में दो खड़े हैं ठाकुर जी, मेरी तरफ जो है वो नित्यानंद है और उस तरफ जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों युगल स्वरूप एक में हो गए हैं, राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है गौरंग। और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है, अनंत शेष है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बहुत शादियां की, भगवान की 16,108 पत्नियां और हर एक पत्नी से 10 बेटे और एक बेटी, गणना करोगे तो रजिस्ट्रेशन का बुक भर जाए, लेकिन बलराम जी को कोई संतान नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान नहीं, बलराम पहले ही नित्यानंद प्रभु संन्यास ले चुके थे, अवधूत थे, लेकिन महाप्रभु ने जबरदस्ती बोला तुम जाओ को स्नान करो, तुम जाओ शादी करो। जबरदस्ती नित्यानंद प्रभु को संन्यास से हटाकर बोले शादी करो जाके, और शादी के लिए भी किसी को अपनी तरफ से भेजा इसके लिए शादी के लिए, तो जाह्नवा माता जी का हाथ दिया उसके पिताजी ने। तो उसकी दूसरी बहन भोजन के लिए परोसने आई वशुद्धा, तो उसी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, दो बहनें जाह्नवा और विशुद्धा। तो जाह्नवा तो कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन विशुद्धा के घर आज के दिन नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मैं स्वयं आपके घर में प्रकट हूंगा। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का क्षीरोदक्षाई रूप के रूप में वीरभद्र बलराम नित्यानंद के पुत्र का आज जन्मदिन है। वीरभद्र जो वसुधा और नित्यानंद का पुत्र है उसका आज जन्मदिन है। वीरभद्र का जो जाह्नवा माता का शिष्य था और एक समय में बड़े अच्छे आचार्य रहे हैं गौड़िया वैष्णव के, वीरभद्र ने सब वैष्णव को इकट्ठा किया था और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का जब गौर पूर्णिमा पहली बार मनाया गया था नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा तो वहां जानवा माता के साथ वीरभद्र गए थे और वीर चंद्र इसको कहते हैं, वीरभद्र भी कहते हैं, उन्होंने प्रवचन दिया था और सारे वैष्णव को वापस संगठित किया था। तो आज उनका भी प्रकट्य दिवस है और बहुला अष्टमी में एक बहुत पुरानी प्राचीन कथा है, सुबह भी हमने कहीं बताई थी। एक गाय थी, बहुला वन है, एक बहुला वन है वृंदावन में, एक गाय थी वहां जंगल से चर के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में शेर आ गया, शेर ने कहा गाय को खाऊंगा। गाय ने कहा मैं तो आपका भोजन हूं, आप तो खा सकते हैं, जंगल के राजा हैं, और वैसे ही शेर तो पशु को ही खाएगा। दुकान से कभी शेर को देखा है बाजार में कहीं खड़ा होकर दाल पोई और गाचो पीमा खाने आया कभी? यहाँ नहीं खाता है ना, शेर कुछ खाता है? हलवा खाता है क्या? दुकान से खरीदारी थोड़ी करने जाता है, शेर तो अपना शिकार करके जंगल में खाता है। तो शेर ने इस गाय को कहा मैं खाऊंगा। गाय ने कहा आप तो मुझे खा सकते हैं क्योंकि राजा है और आपका मैं भोजन हूं, लेकिन मेरे को थोड़ी छुट्टी दो, मेरा बच्चा घर में भूखा है, उस बछड़े को मैं दूध पिला के वापस आऊंगी, फिर आप मुझे खा लो। बोला घर जाने के बाद कोई वापस आता है का? और सुरसा को कहा था हनुमान ने, पहले मैं सीता का पता लेके आता हूँ फिर मुझे खाना। सुरसा ने बोला ऐसा बात मानने वाली नहीं हो, कोई मरने के लिए वापस नहीं आता, अभी मेरे मुंह में जाओ। शेर बोलता है अभी मैं खाऊंगा। बोला नहीं, मेरा बच्चा भूखा है, मैं बच्चे को दूध पिला के आती हूँ। शेर बात मान गया, उस गाय की गा घर गई, गाय ने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, आंखों से आंसू थे। तो माँ ने, बच्चा पूछता है माँ तो आप रो क्यों रही हो? बोला बेटा आज जितना चाहिए उतना दूध पी लो, अब मैं वचन दे के आई हूँ शेर को और मैं वापस जाऊंगी और शेर मेरे को खाएगा, तो मैं आपको दूध फिर नहीं पिला सकती। बोला आप वचन दे के आई हो शेर को तो आप क्यों जाएंगी? आप दूध देती हैं, ब्राह्मण को दूध देती हैं, उसके घर में हम रहते हैं, मैं अब छोटा बेचा हूं, मैंने कुछ किया नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं शेर के पास चला जाता हूं, शेर मुझे खा लेगा, आपको क्यों खाएगा? मैं बेटे होते आप मां को थोड़ी मरने दूंगा। मां और बेटे के बीच में ये झगड़ा हो रहा है, वो बोलता है मैं जाऊंगा, वो बोलती है मैं जाऊंगी। तब ब्राह्मण ने सुन लिया, जो ग्वाला था उसने कहा आप क्या दूध नहीं पी रहे हो आज? जल्दी करो दूध पियो, मेरे को दूध निकालना है। बोला मां जा रही है, शेर इसको खाएगा, और मैं कहता हूं मां नहीं जाए, आपको दूध देती है घर में, मैं जाता हूं। ब्राह्मण ने कहा आप दोनों क्यों जाएंगे? आप तो दोनों पशु हैं, मैं आपका रक्षक हूं, तो मैं आपकी रक्षा करूं, ये मेरा धर्म है, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा। शेर को खाना है तो मुझे खा ले, आप तो गऊ है और मेरे घर में रह रही है, तो मैं बुद्धिमान हूं कि आप पशु को मरने के लिए जाने दो, ये मेरा धर्म नहीं। अब तो तीनों को झगड़ा हुआ, तीनों ही चले वहां और शेर के पास, शेर को गाय बोलती है मुझे खाओ, बछड़ा बोलता है इसको मत खाओ मेरे को खाओ, मैं छोटा हूं मेरे को खाओ, और ग्वाला बोलता है इन दोनों को मत खाओ और मेरे को खाओ। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा तो आजकल मैंने सुना नहीं, एक के बजाय तीन तीन आए और झगड़ा कर रहे हैं आपस में, वो कहता है मुझे खाओ, वो कहता है मुझे खाओ। तब शेर एकदम अपने असली रूप में आया, वो तो साक्षात भगवान था, परीक्षा ले रहे थे, और वो बछड़ा नारद जी था और गाय धरती माता थी और पिपलायन ऋषि था, कौन ऐसे तीन थे। तो ये आज के दिन ये एक कथा हुई थी, तो उसको बहुला अष्टमी के दिन इस गाय का बच्चे की रक्षा के लिए मौत के मुंह से वापस आई थी दूध पिलाने के लिए, तो माताएं व्रत रखा करती थी किसी जमाने में बहुला अष्टमी के दिन। अभी तो सब भूल गया, अब तो सारा दिन इधर देखो उधर देखो, केवल खाने का ही काम है। हरे कृष्णा। तो बहुला अष्टमी की, राधा कुंड आविर्भाव की, वीरभद्र आविर्भाव की, शिशिगौर निताय की, राधा दामोदर की, यशोदा दामोदर की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अब 5 मिनट आनंद से कीर्तन कीजिए और प्रसाद का कहाँ है बाहर, और जल्दी में है तो प्रसाद के ऊपर जाइए और जो बैठे हैं थोड़ी देर के लिए कीर्तन का आनंद लीजिए। 9 बजे तक यहाँ से सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। हरे कृष्णा। कीर्तन कीजिए।